समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नास का नमस्कार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, याद करेंगे कुछ मशहूर हस्तियों को और जानेंगे कैसा रहेगा आज का मौसम। आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुस्तफा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू दिस संडे एपिसोड ऑफ आज सवेरे, वेर वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। फरहत
जी, सारा सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार को संपन्न हुए मतदान के साथ ही शेष चरणों के चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। इंडी गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं। इस महीने की 26 तारीख को दूसरे चरण में केरल की 20 सीट, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन भरने का काम शुक्रवार शाम को समाप्त हो गया था। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।
Prime Minister Narendra Modi has said that central agencies like the Enforcement Directorate and CBI should be allowed to work independently and the government and politicians should not interfere in their functioning. During an interview with a private news channel while replying to a question on allegations of misuse of central agencies, Mr. Modi said that they are just doing their work and that even as Prime Minister, he has no right to interfere in the work of ED. Mr. Modi said that questions should be raised if the ED and CBI do not do their jobs, but here the opposition is instead asking why the agencies are doing their jobs. He said before 2014, the ED conducted only 84 searches and after 2014, a total of 7,000 searches were conducted, which shows the efficiency of this agency. In reply to another question, the Prime Minister said, the model of his government is to empower every citizen of the country, especially the poor. He said it is the responsibility of the government to reduce the burden on the country's citizens. In reply to another question, the Prime Minister said that the Lok Sabha election of 2024 is not being fought by the BJP or by him, but it is an initiative of the people. The Prime Minister said that the country witnessed unstable governments for 3 decades, due to which the country's development was affected. He added that the voters of the country have experienced a stable government as to what it can do.
इस वर्ष फरवरी के महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कुल 15,48,000 नए सदस्य जोड़े हैं। भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फरवरी के महीने में लगभग 7,78,000 नए सदस्यों को नामांकित किया गया है। नए सदस्यों में 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। नए सदस्यों में अधिकांश 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। और आज महावीर जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नागरिकों विशेषकर जैन समुदाय के लोगों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा और करुणा के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर हमें राष्ट्र के विकास के लिए समर्पण के साथ काम करने और समाज में एकता तथा प्रेम का प्रसार करने का प्रण लेना चाहिए।
Yes, Farhat, on the auspicious occasion of Mahavir Jayanti, Prime Minister Modi will today inaugurate the 2550th Bhagwan Mahavir Nirvan Mahotsav at 10 AM at Bharat Mandapam in New Delhi. The Prime Minister will also release a commemorative stamp and coin and address the gathering on the occasion. Bhagwan Mahavir, the 24th Tirthankar, illuminated the path of peaceful coexistence and universal brotherhood through Jain principles like Ahimsa, Satya, Asatya, Brahmacharya and Aparigraha. 21st April 2024 is the Janma Kalyanak of Bhagwan Mahavir Swami, and the government is commemorating the occasion with the Jain community by organizing a cultural program in Bharat Mandapam, along with saints from the Jain community gracing the occasion and blessing the congregation.
और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों और झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। वहीं उड़ीसा में आज से लू की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। विभाग का कहना है कि तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा केरल में बुधवार तक उमस भरी गर्मी रहने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी आज मौसम गर्म रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और इस संबंध में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में कल रात 9:30 बजे से लू की रोकथाम और बचाव विषय पर चर्चा प्रसारित की गई है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से सवाल कर सकेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा।
And now some news coming in from the Maldives election. Posts to the People's Majlis, which is the parliament in Maldives, are being held today. In the fourth multi-party parliamentary elections, the archipelago nation will elect representatives out of 368 candidates across 93 constituencies. As the Met Department predicts a rainy day today in Malé, over 2.8 lakh voters will exercise their franchise at 602 polling stations, including 3 polling stations abroad. The polls are being seen as a crucial litmus test for the incumbent president, Dr. Mohamed Moizu's party, which has been under fire by the opposition for its policies. And news coming in from IPL, well, Sunrisers Hyderabad defeated Delhi Capitals by 67 runs at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Chasing a victory target of 267 runs, Delhi were all out for 199 runs in 19.1 overs. And well, there are two fixtures slated for today. In the first match, Kolkata Knight Riders will take on Royal Challengers Bengaluru at Eden Gardens in Kolkata at 3:30 in the afternoon. And in the second match, Punjab Kings will lock horns with Gujarat Titans at Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium in Mulanpur, Chandigarh. The match will be played from 7:30 in the evening.
और श्रोताओ, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में क्या है खास। सायरा,
वेल फरहाद, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास, सरपास्ड इट्स गोल ऑफ फिलिंग 366 पैटर्न्स इन द लास्ट एकेडमिक ईयर, रीचिंग मोर देन 370. The director of IITM, M.V. Kamakoti, said that the institute had secured the second position in the National Institutional Ranking Framework for Research and Innovation. He said that it is the innovation and protection of the IPs that are going to make the country a superpower. IIT Madras has set a new target for the coming year. 100 startups are being launched by IITM graduates. This goal translates to roughly one startup every 3 days. He said that looking towards the future, he hopes that by next year, 20% of graduating students will become chief technology officers. Very good news coming in from Chennai. Another news coming in from Chennai. Well, customs officers at Chennai airport seized around 5,000 red-eared slider turtle hatchlings that were abandoned at the international terminal. The turtles were of Mexican origin and are in demand, exotic species in the US to be reared as pets. The turtles are highly invasive and had been spotted in Indian water bodies as well, indicating the unregulated smuggling of the species into the country. The suitcases were part of the checked-in luggage that arrived in Bharti Air Freight and was not claimed by any passenger. The customs officials and CISF personnel were informed about it. There were several plastic boxes inside with holes and were full of red-eared slider turtle hatchlings. Moving on to Bengaluru, Karnataka Chief Electoral Officer Manoj Kumar Meena has informed that Walk to Your Polling Booths campaign will be held on 21st of April across 14 Lok Sabha constituencies, covering 30,577 polling booths, where the second phase of elections will be held on 26th of April. It will create awareness about the universal adult franchise. As part of the campaign, polling officials will walk to the polling centres and hoist the national flag. The flag will carry the logo. The flag will also be of the Election Commission. It will carry the logo of the Election Commission and General Lok Sabha Election 2024 line. The event will create awareness about the polling booth location, apart from educating the people about the helpline that is 1950, the C-Vigil app, the KYC app and Saksham apps. LED publicity vehicles will play election songs and videos promoting voting. Street plays, cultural programs, cycles, motorcycle and walkathons will be organized simultaneously as well. Another Walk to Your Polling Booth campaign will be organized on 28th of April in the remaining 14 Lok Sabha constituencies, going to polls on the 7th of May in the third phase. So, Farhat, we are seeing that even the Election Commission is devising new ways to create awareness among people ki bhai bahar nikle aur ye bahut hi mahatvapurna right hai.
Bilkul, kyunki yuvao ke andar sabse badi baat hai josh bharna ki aap apne mataadhikar ka sahi istemal kar sake. To aise mein mujhe lagta hai ki agar is tarah ke campaign chalaye jayenge to zyada se zyada jo log hain, chahe wo mahilaen hain, yuva hain ya fir buzurg hain, wo aage aakar jo hai matdan karenge.
Yes, in fact aapne buzurg ka zikr kiya, so let's again reiterate that from this year vote from home bhi shuru kiya gaya for senior citizens above the age of 75, they can opt for that.
तो यानी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है और अपने जो मताधिकार का उपयोग है वो हम सबको करना है.
Yes. Moving on to Hyderabad. In Telangana, the election authorities have received 77 sets of nomination papers filed by 65 candidates from different political parties and independents in all the 17 Lok Sabha constituencies in the state yesterday. With this, the total number of nomination papers received in the state to date has become 194 from 156 candidates. The last day for filing nominations is the 25th of this month. So, Farhad, this was the news that I had from Hyderabad, Bengaluru and Chennai. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai, Kolkata?
जी सायरा, राजधानी दिल्ली में भी जो है जागरूकता की ही बात करते हैं. राजधानी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय जागरूकता अभियान चला रहा है. यह अभियान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है. पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और इस दौरान युवा मतदाताओं को शपथ भी दिलाई गई. मेरा वोट मेरी ताकत के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया. गौरतलब है कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 25 मई को होगा. वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण 25 अप्रैल से शुरू होगा. इसके बाद दाखिले का दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा. और अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई की ओर रुख करते हैं. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट पर तलाशी अभियान चलाया है. ईडी ने निवेशकों से 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुंबई में तलाशी अभियान चलाया. ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय दलालों और व्यापारियों से जुड़े विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त किया. कुल की गई संपत्ति में कुल 35 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्के शामिल हैं. और अब आगे बढ़ते हैं कोलकाता की ओर. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने पहले चरण के चुनाव के बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सीईओ आरिज आफताब ने कहा कि कूच बिहार के राजपुर थाना अंतर्गत लव सरकार नामक व्यक्ति सुबह घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है. कूच बिहार के शीतल कच्छी में बूथ संख्या 221 का एक पोलिंग एजेंट अनुपस्थित था. बाद में वे मतदान केन्द्र पर आया. कूच बिहार के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में सुबह अनंत बर्मन नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया. दोनों घायलों का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है. सीईओ ने यह भी बताया कि कुल 12 गिरफ्तारियां इस दौरान की गई हैं. सी विजिल ऐप सहित चुनाव आयोग को प्राप्त शिकायतों का समाधान भी कर दिया गया है. और श्रोताओं, अब रुख करते हैं महानगरों के मौसम का. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज दिन भर तेज हवाएं चलेंगी, गर्मी थोड़ी सी और बढ़ सकती है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. लेकिन कोलकाता में भी गर्मी रहेगी. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 41 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो बहुत ही गर्मी का एहसास जो है आज लोगों को करना पड़ेगा। तो ये तो था दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मौसम का हाल। सायरा, कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम?
वेल, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, विच इज गोइंग टू हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई इन ऑल दीज थ्री सिटीज। इन चेन्नई मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 36, वेल मिनिमम वॉज 29। बेंगलुरु विल हैव मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22। एंड इन हैदराबाद देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन ऑफ थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म एज वेल, एंड टेम्परेचर इन हैदराबाद विल हॉवर बिटवीन 28 एंड 37 डिग्री सेल्सियस।
तो चलिए मौसम के बाद इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो क्या है आज इतिहास में खास?
Well, Farhat, we take our listeners back to the year 1526, where the first battle of Panipat was fought between the invading forces of Babur and the Lodhi Empire. It took place on this day, that is on 21st April 1526. It marked the beginning of the Mughal Empire. This was also one of the earliest battles that involved the use of gunpowder, firearms and field artillery.
और बात करते हैं सन 1789 की, जहां आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स ने शपथ ली और 1941 में यूनान के नाजी जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। वहीं 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी के बर्लिन शहर के कुछ बाहरी इलाकों पर कब्जा किया। इसे हिटलर के खिलाफ एक बड़ी जीत माना गया।
And on this day in 1960, Brazil's capital Rio de Janeiro was inaugurated. Brazil inaugurated to great fanfare its new capital, Brasilia, which is a futuristic city created out of nothing and boasting many architectural masterpieces. Also on this day in 1977, Annie, a popular musical based on the newspaper comic strip Little Orphan Annie, first opened on Broadway. And the character of Annie is based on Harold Gray's popular comic strip Little Orphan Annie.
सन 2007 में आज ही के दिन वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया।
And Farhat, we all know that today is National Civil Services Day.
जी.
It holds significant importance as it recognizes and respects the invaluable contributions made by civil servants to the country's growth and development. This day honors and celebrates the dedication, integrity and hard work of civil servants who uphold the principles of good governance and serve the public. It's an opportunity to acknowledge their achievements in implementing policies, delivering essential services and addressing the needs of the public across various sectors including social welfare, healthcare and education. So, well, Farhat, we all can say we are a democracy, so पार्टीज भले ही बदल जाएं, बट जो सिविल सर्वेंट्स की अहमियत है, नो बडी कैन अंडरमाइन दैट, बिकॉज द कॉमन मैन इज डिपेंडेंट ऑन द, यू कैन से, गवर्नेंस बाय दीज सिविल सर्वेंट्स। सो द नेशन ओज अ लॉट देम, हियर इज पेइंग ट्रिब्यूट टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स टुडे। एंड नाउ इफ वी रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज, फरहत, तो इस फहरिस्त में आपके पास किसका नाम सबसे पहले है?
सारा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के एक बहादुर सैनिक की, गब्बर सिंह नेगी की। वैसे तो पहाड़ी प्रदेश ने देश को कई बहादुर सैनिक दिए, जिसमें से एक थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्तराखंड के चंबा के एक छोटे से गांव मंजूर के रहने वाले गब्बर सिंह नेगी। इन्हें जर्मनी की सेना के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। उत्तराखंड के इस वीर सपूत ने जर्मनी के 350 सैनिक और अधिकारियों को अकेले ही युद्ध में बंदी बना लिया था। इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए सिर्फ 20 साल की उम्र में चंबा के गब्बर सिंह नेगी वीरगति को प्राप्त हुए और तभी से उत्तराखंड वासियों को उनकी वीरता के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ये वही किस्से हैं जिनको सुनकर उत्तराखंड के जवान देश सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। और अब हम याद कर रहे हैं भारत में ऐसी, वैसे तो कई महिला गणितज्ञ हुई जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे शकुंतला देवी की। अपनी बेहतरीन मैथ स्किल्स के चलते उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहकर पुकारा जाता था। अपनी इसी स्पीड के साथ शकुंतला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। खास बात यह है कि शकुंतला देवी ने यह कारनामा उस दौर में किया जब दुनिया में कंप्यूटर के बारे में कोई भी नहीं जानता था और न ही कैलकुलेटर तैयार हुए थे। उस दौर में शकुंतला देवी गणित के बड़े बड़े सवाल मिनटों में जबानी हल कर देती थी। गणित के अलावा शकुंतला की लेखन कला भी बेहद उम्दा थी। गणित के अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और पहेलियों से जुड़ी किताबें लिखी। साल 1977 में शकुंतला ने द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल किताब लिखी, जो समलैंगिकता पर लिखी हुई उनकी पहली किताब थी।
Today we are also remembering Prince Rogers Nelson. He is commonly known as Prince, a singer, multi-instrumentalist, songwriter, record producer and actor. He was the recipient of numerous awards and nominations and is widely regarded as one of the greatest musicians of his generation. He was known for his flamboyant and androgynous persona, his wide vocal range which included a far-reaching falsetto and high-pitched screams, and his skill as a multi-instrumentalist, often preferring to play all or most of the instruments on his recordings. His music incorporated a wide variety of styles, including funk, R&B, rock, new wave, soul, synth pop, pop, jazz, blues, and hip hop. And he produced his albums himself, pioneering the Minneapolis sound. Since he was raised and born in Minneapolis, he signed a record deal with Warner Brothers. And well, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, but I think the best tribute to an artist is when we listen to his song.
Heard about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometimes. Listen to the groove, y'all.
We're also remembering Mirza Rafiuddin Raz, a very famous Urdu shayar, on his birth anniversary today. Aur unke kuch chand ashar hain.
Ji.
Na khatra tirgi se tha, na khatra tirgi ka hai. Daro diwar pe pehra, abhi tak roshni ka hai.
Bahut khoob.
Na kar khoon mein kaanton pe aksar raqs karta hoon. Ye masti bekhudi ki hai, ya nasha zindagi ka hai. यकीन आसार लम्हों पर जो सच पूछो तो राज अब तक हुकूमत वहम ही की है तसल्लुत ख्वाब ही का है. A very beautiful couplet by Mirza Rafiuddin. He published his first volume of poetry, Deeda-e-Khush-Khwab, in 1988 and followed it with Binai, Pehrahan-e-Fikr, Roshni ke Khad-o-Khal and Abhi Darya mein Pani hai. And उनके जो है कंपैरिजन बहुत सारे क्लासिकल पोएट्स स्पेशली गालिब और मीर से किया जाता है. इनफैक्ट इन हिज आर्टिकल अफकार की ताजगी मॉडर्न डे पोएट अफसर मैपुरी ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन राज एंड मेनी अदर गजल पोएट्स एंड क्लासिकल पोएट्स. And he says that some of Raz's verses are close to Yagin's voice because he has not begun his poetry with romantic exaggerations in which countless poets waste their lives. So that was Mirza Rafiuddin. And today we are also remembering Muhammad Iqbal, jinko honorific Allama ka diya gaya, Allama Iqbal ki aaj death anniversary hai. And a philosopher, poet and of course a politician as well, but his poetry is considered to be among the greatest of the 20th century. And even though he was a Punjabi, Sialkot mein wo paida hue, but Urdu mein unhone bahut zyada keh sakte hain contribution diya.
Ji bilkul Sahara, unki ek bahut hi khoobsurat si shayari bhi rahi ki tu shahi hai, parwaz hai kaam tera, tere samne aasma aur bhi hain. To Iqbal yug ko pehchanne wale aur yug nirmata shayar the. Unki shayari ek vichar ke khaas nizam se रोशनी हासिल करती थी जो उन्होंने पूरब और पश्चिम के सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों के गहन अवलोकन के बाद संकलित किया था और ये महसूस किया था कि उच्च मानवीय मूल्यों का जो पतन दोनों जगह मुख्तलिफ अंदाज में इंसानियत को जकड़े हुए है उसका हल जरूरी है. इकबाल ने अपने दौर और अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी जबान दी जो हर तरह की भावनाओं और विचारों को खूबसूरती के साथ अदा कर सके.
Yes, and my personal favorite Farhat is Iqbal's Shikwa Jawab Shikwa, especially jab wo Teena Sani ki awaaz mein ho. So let's listen to it. नाल बुलबुल के सुनूं और हम तन को शरहूं हम नवा में भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको शिकवा अल्लाह से हाकम
बदहन है मुझको है बजा शेवई तस्लीम में मशहूर हैं हम किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम ऐ खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले फुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले फुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले फुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या गाफिल आदाब से सुकाने जमी कैसे हैं शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं इस कदर शोख कि अल्लाह से भी बरहम है था जो मस्जिद मलाइक ये वही आदम है आलम कैफ है दानाए रमूजे कम है हाँ मगर इसके असरार से ना महरम है नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को बात करने का सलीका नहीं नादानों को
सरखाए देर से बातिल को मिटाया
बहुत खूब और सारा अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान की परछाई तक उसका साथ छोड़ देती है तो सिर्फ खुदा या ईश्वर ही होता है जो उसे अंधेरे से बाहर निकाल कर लेकर आता है
एब्सोल्युटली आई थिंक नाउ यू आर रिमेम्बरिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव कपलेट बाय इकबाल
जी बिल्कुल और मुझे जो युवाओं के बीच काफी मशहूर है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है
अभी तो ये रजा है कि हमारे पास वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट एंड वी They do have a very special personality jinki aaj death anniversary hai today is Iqbal Bano's death anniversary who specialized in ghazal in fact she is also called the malika e ghazal and she was known for her semi classical urdu ghazal songs and classical tumris but also sang easy listening numbers in the 50s films in 74 she became the recipient of the pride of performance award that nishani imtiaz aur unki ek badi khoobsurat si ghazal hai jo Faiz ne likhi hai let's listen to it
dashte tanha दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लरजा है तेरी आवाज के साए तेरे होठों के शराब दश्ते तन्हाई में
और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इकबाल बानो की जो शुरुआत है सारा वो आकाशवाणी से ही हुई थी और उस्ताद चांद खान ने इन्हें मौका दिया था कि वो अपना पहला जो गीत है वो यहाँ रिकॉर्ड करवाएं
हेलो के समन और गुलाब दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरजा है
तो इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट संडे अहेड।
नमस्कार।